नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने नोएडा में 6.46 एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी की योजना इस जमीन पर 3000 रुपए के अनुमानित राजस्व वाली एक आवासीय परियोजना विकसित करने की है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ई नीलामी में उसे नोएडा में एक प्रमुख भूखंड विकसित करने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी घोषित किया गया है और उसने आवंटन पत्र हासिल कर लिया है। कुल 6.46 एकड़ में फैली ये जमीन नोएडा के सेक्टर 44 में स्थित है। कंपनी ने कहा कि भूखंड में लगभग 14 लाख वर्ग फुट विकास क्षमता और लगभग 3000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है। नोएडा में गोदरेज प्रॉपर्टीज की ये छठी परियोजना होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ गौरव पांडे ने कहा कि नोएडा में मौजूदा परियोजनाओं के लिए मजबूत मांग मिली है और ये परियोजना एनसीआर में कंपनी के विकास पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी। सिंगापुर ने विदेशी कामगारों को जारी किए जाने वाले रोजगार पास ईपी के लिए न्यूनतम योग्यता मासिक वेतन को 5000 सिंगापुर डॉलर से बढ़ाकर 5600 सिंगापुर डॉलर कर दिया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वित्तीय सेवाओं में काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन 5500 सिंगापुर डॉलर से बढ़ाकर 6200 सिंगापुर डॉलर कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अधिक वेतन के रुझानों को देखते हुए ऐसा किया गया है। नया वेतनमान ईपी धारकों पर तब लागू होगा जब वो एक साल बाद पास का नवीनीकरण कराएंगे। इन बदलावों का मकसद सभी स्तरों पर सिंगापुर के विदेशी कार्यबल के कौशल स्तर को बनाए रखना है, साथ ही ये सुनिश्चित करना भी है कि सिंगापुर के लोगों को अच्छी नौकरियां मिल सकें। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल और मुख्य कानूनी अधिकारी विजय गड्डे सहित कंपनी के पिछली नेतृत्व टीम ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि अरबपति कारोबारी ने उन्हें बिना किसी कारण के निकाल दिया और 12.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बकाए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अग्रवाल, गड्ढे, ट्विटर के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नेड सीगल और जनरल काउंसिल सीन एडगेट ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख और एक्स कॉर्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि मस्क के मन में अग्रवाल, गड्ढे, सेगल और एडगेट के लिए बहुत अधिक गुस्सा है क्योंकि इन लोगों ने मस्क के ट्विटर सौदे से पीछे हटने की कोशिश करने के दौरान ट्विटर के सार्वजनिक शेयरधारकों के हितों का जोरदार प्रतिनिधित्व किया। मुकदमे में ये भी कहा गया है कि उनके प्रयासों के चलते मस्क ने जीवन भर बदला लेने की कसम खाई है। अग्रवाल ने 2011 से 2022 तक ट्विटर में काम किया और 29 नवंबर 2021 से 27 अक्टूबर 2022 तक मंच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल ने मंगलवार को कहा कि उसे सऊदी अरब की ऊर्जा प्रमुख कंपनी अरामको से 800 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का ठेका मिला है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने बयान में कहा कि उसे सऊदी अरब में मास्टर गैस प्रणाली नेटवर्क के तीसरे चरण के 3 हिस्सों के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य करने को अरामको से आशय पत्र मिला है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य के दायरे में 800 किलोमीटर से अधिक की गैस पाइपलाइन बिछाना शामिल है। कंपनी ने कहा कि परियोजना के मूल्य की पुष्टि काम पूरा होने के बाद की जाएगी। ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी एसिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर मंगलवार को अपने निर्गम मूल्य 142 रुपए के मुकाबले करीब 87% बढ़कर सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर बीएससी पर 85.91% बढ़कर 264 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। बाद में शेयर 93.27% बढ़कर 274.45 रुपए पर पहुंच गए। इस तरह शेयर एनएससी पर 86.61% बढ़कर 265 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। एसिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को 129.52 गुना अभिदान मिला था। स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार को 171 रुपए के निर्गम मूल्य के मुकाबले 33% बढ़कर सूचीबद्ध हुए। शेयर बीएससी पर 33.33% बढ़कर 228 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। बाद में भाव 38.59% बढ़कर 237 रुपए पर पहुंच गया। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के शेयर एनएससी पर 31.57% की तेजी के साथ 225 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 12,04,130 करोड़ रुपए है। कंपनी के आईपीओ को 98.99 गुना अभिदान मिला था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।